दानियल की पुस्तक संख्या 40। पॉल। दानियल का पहला अध्याय जब दानियल के चौथे अध्याय के साथ एक दूसरे पर रखा जाता है, 1698 तक 1798 से 1744 तक पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। उस इतिहास में दानियल की पुस्तक की मुहर खोली गई और जो भाग खोला गया था वो अध्याय 7, 8 और 9 थे। पंक्ति पर पंक्ति के अनुसार अध्याय 1, 4 और फिर 7 से 9 पहले स्वर्गदूत के मिलराइट आंदोलन के इतिहास को दर्शाते हैं। उस इतिहास 1798 से 1850 में एडवेंटिज्म के बुनियादी सत्य स्थापित हुए और वे सत्य अंततः 1843 के पायनियर चार्ट पर प्रदर्शित किए गए। डैनियल के दूसरे अध्याय में वर्णित नबूकदनेस्सर की प्रतिमा चार्ट पर है। डैनियल अध्याय 7 और 8 के दर्शन चार्ट पर है। अध्याय 8 का द डेली दर्शाया गया है और लेविटिकस 26 का 7 टाइम्स भी। रिविलेशन अध्याय 9 में दर्शाए गए इस्लाम के 3 वोज वहां है। परमेश्वर ने बार बार पूर्व चेतावनी दी थी कि उन बुनियादी सत्यों पर आक्रमण किया जाएगा।
जो परमेश्वर के प्रहरी बनकर सियोन की दीवारों पर खड़े हैं वे ऐसे पुरुष हों जो लोगों पर आने वाले खतरों को पहले से देख सकें और जो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म में भेद कर सकें। चेतावनी आ चुकी है, किसी भी ऐसी बात को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी है जो उस विश्वास की नींव को विचलित करे जिस पर हम 1842, 1843 और 1842-15 में संदेश के आने के समय से ही निर्माण करते आ रहे हैं। मैं इस संदेश में थी और तब से अब तक मैं उस ज्योति के प्रति सच्ची रहकर संसार के सामने खड़ी रही हूँ जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमारा ये कोई अभिप्राय नहीं है कि हम उस मंच से अपने पांव हटा लें जिस पर उन्हें रखा गया था जब हम दिन प्रतिदिन गंभीर प्रार्थना के साथ प्रकाश की खोज में यहोवा की तलाश करते थे। क्या तुम समझते हो कि मैं उस ज्योति को त्याग सकती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है? वो युगों की चट्टान के समान होने वाली है। जब से वो मुझे दी गई तभी से वो मेरा मार्गदर्शन करती आ रही है। रिव्यू एंड हेरल्ड, April 14, 1916।
धूल झाड़ने वाले व्यक्ति का काम जो परमेश्वर के अंतकाल के लोगों की भागीदारी से पूरा किया जाना है, यशाया द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। जब वो अंतकाल के लोगों की पहचान करता है और उस कार्य को बताता है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि अंतिम दिनों के आने से पहले ही नींवों को त्रुटि के नीचे दफन कर दिया जाना नियत था।
और तेरे वंश के लोग पुराने उजड़े हुए स्थानों का पुनर्निर्माण करेंगे। तू बहुत सी पीढ़ियों की नींवों को फिर से खड़ा करेगा और तुझे कहा जाएगा दरार को भरने वाला, निवास के लिए मार्गों को पुनर्स्थापित करने वाला। यशाया 58:2।
पुराने उजाड़ स्थानों से आशय मूर्ति पूजा और पोपवाद की दो उजाड़कारी शक्तियों से संबंधित सिद्धांतगत सत्यों से है। मूर्ति पूजा के बाद पोपवाद आने का ये दो उजाड़कारी शक्तियों का क्रम ही वो ढांचा था जिसका उपयोग विलियम मिलर ने अपनी प्रस्तुत की हर भविष्यवाणी में किया।
और वे पुराने उजाड़ स्थानों का पुनर्निर्माण करेंगे, वे पहले के उजाड़ों को पुनर्स्थापित करेंगे और वे उन उजड़े हुए नगरों की मरम्मत करेंगे जो अनेक पीढ़ियों से उजाड़ पड़े हैं। यशाया 1:1।
भविष्यवाणी की वो संरचना जिसे ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उन दो शक्तियों का इतिहास और उनके आपसी संबंध है। निवास करने के मार्ग को बहाल करना मिलर के ढांचे की पुनर्स्थापना है जिसे उसके स्वप्न में धूल झाड़ने वाले व्यक्ति के कार्य द्वारा दर्शाया गया था। यशाया ने इज़रा और उन लोगों के इतिहास का उदाहरण दिया जो बाबुल से लौटे और यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया ताकि प्राचीन उजाड़ों की पुनर्स्थापना की पहचान की जा सके।
हमारे पितरों के दिनों से लेकर आज तक हम भारी अपराध में लिप्त रहे हैं और अपनी अधर्मताओं के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक देश देश के राजाओं के हाथ में सौंप दिए गए, तलवार के हवाले, बंधुवाई के लिए, लूट के लिए और मुख की लज्जा उठाने के लिए, जैसा कि आज है। और अब थोड़ी देर के लिए प्रभु हमारे परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्रकट हुआ है कि वो हमें बच निकलने के लिए एक अवशेष छोड़ दे और अपने पवित्र स्थान में हमें एक कील दे ताकि हमारा परमेश्वर हमारी आँखों को उजियाला दे और हमारी बंधुवाई में हमें थोड़ी बहाली दे, क्योंकि हम दास थे तो भी हमारी बंधुवाई में हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, परंतु उसने फारस के राजाओं के सम्मुख हम पर करुणा की कि वो हमें पुनर्जीवन दे, हमारे परमेश्वर के भवन को स्थापित करे, उसके उजाड़ों की मरम्मत करे और यहूदा और यरूशलेम में हमें एक परकोटा दे। एज्रा 9:7-9।
एज्रा और वे जिन्होंने यरूशलेम की मरम्मत की उस शेष का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निवास करने योग्य मार्गों के पुनर्स्थापक हैं, और वही लोग हैं जो लेव्य व्यवस्था 26 की प्रार्थना के संदर्भ में ये कार्य पूरा कर रहे हैं जिसका उल्लेख एज्रा करते हैं कि हमारे पितरों के दिनों से लेकर आज तक हम बड़े अपराध में पड़े रहे हैं और हमारी अधर्मताओं के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक देशों के राजाओं के हाथ में तलवार, बंधुवाई, लूट और मुख लज्जा के हवाले कर दिए गए हैं। जिस दिन का वो उल्लेख कर रहे हैं वो वही दिन है जब अंतिम दिनों का शेष निवास करने योग्य मार्गों को फिर से बहाल करता है। एज्रा का अवशेष भी दो गवाह हैं जो 3.5 दिन के अंत में पुनर्जीवित किए जाते हैं, और जैसा कि दानियल ने अध्याय 9 में दर्शाया है, लेव्य व्यवस्था 26 की प्रार्थना को पूरा करते हैं। जब एज्रा और उसके सहकर्मी निर्वासन से लौटे और यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया, तब वे मिलर के रत्नों की पुनर्स्थापना के कार्य के प्रतिरूप बने जो मिलर के आधारभूत सत्यों की पुनर्स्थापना का कार्य है। इसी कारण मिलर के कार्य का ढांचा समझना अत्यावश्यक है।
प्रेरितों ने एक सुदृढ़ नींव पर निर्माण किया, अर्थात युगों की चट्टान पर। इस नींव पर वे संसार से निकाले हुए पत्थर लाते गए। निर्माताओं का परिश्रम बाधाओं से रहित नहीं था। मसीह के शत्रुओं के विरोध ने उनके कार्य को अत्यंत कठिन बना दिया। उन्हें उन लोगों के कट्टरपन, पक्षपात और घृणा से जूझना पड़ा जो झूठी नींव पर निर्माण कर रहे थे। कलीसिया के निर्माण में कार्य करने वाले बहुत से लोगों की तुलना नहेम्या के दिनों की दीवार बनाने वालों से की जा सकती है, जिनके विषय में लिखा है, जो दीवार का निर्माण कर रहे थे और जो बोझ उठाते थे तथा जो उन्हें लादते थे, हर एक व्यक्ति एक हाथ से काम करता था और दूसरे हाथ में हथियार पकड़े रहता था। नहेम्या 4:17। प्रेरितों के काम 46।
यशाया के दोनों खंडों में कार्य ये है कि कई पीढ़ियों की नींवों को फिर से खड़ा किया जाए और कई पीढ़ियों से पड़े उजाड़ को बहाल किया जाए। यशाया एक आध्यात्मिक कार्य की पहचान कर रहे हैं जिसे भौतिक कार्य द्वारा चित्रित किया गया था। नींवों की रक्षा की जानी थी, परंतु इसके बजाय अंततः वे नकली रत्नों की एक झूठी नींव से पूरी तरह ढक दी गई। जिन्हें यशाया पहचानते हैं वे ईंट पत्थरों को नहीं बल्कि मिलर राइट्स के आधारभूत सत्यों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। उन सत्यों का प्रतीक मिलर राइट्स का वो ढांचा है जो दो उजाड़ करने वाली शक्तियों को प्रस्तुत करता है जिन्होंने 7 समय तक पवित्र स्थान और सेना को रौंदा। उस पुनर्स्थापन के कार्य को नींवों और अनेकों पीढ़ियों के उजाड़ को फिर से उठाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और ये उस भविष्यवाणी संबंधी कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जो यहाँ थोड़ा और वहाँ थोड़ा के अनुसार भविष्यवाणी की रेखा पर भविष्यवाणी की रेखा रखकर मूलभूत सत्यों की बहाली करता है। नींवों और उजाड़ों को पुनः स्थापित करने का कार्य 1834 एंड 1815 के अग्रणी चार्टों पर निरूपित मूल सत्यों को प्रस्तुत करने और उनका बचाव करने का कार्य है जो हबक्कुक अध्याय 2 की 2 पट्टिकाएं हैं, और ये कार्य रेखा पर रेखा की अंतिम वर्षा की पद्धति से संपन्न होता है। ये उन लोगों के विवाद के बीच यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौटने का कार्य है जो मिलर के स्वप्न के झूठे रत्नों द्वारा दर्शाई गई एक नकली नींव को बनाए रखना चाहते हैं।
शत्रु हमारे भाइयों और बहनों का मन उस कार्य से हटाने का प्रयास कर रहा है जिसमें एक प्रजा को तैयार करना है जो इन अंतिम दिनों में दृढ़ता से खड़ी रह सके। उसकी कपटपूर्ण युक्तियां मनों को इस समय के खतरों और कर्तव्यों से दूर ले जाने के लिए बनाई गई हैं। वे उस प्रकाश को कुछ नहीं समझते जिसे मसीह अपने लोगों के लिए यूहन्ना को देने स्वर्ग से आए थे। वे ये सिखाते हैं कि हमारे सामने ही जो घटनाएं हैं वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्हें विशेष ध्यान दिया जाए। वे स्वर्गीय मूल की सच्चाई को अप्रभावी कर देते हैं और परमेश्वर के लोगों से उनका पूर्व अनुभव छीन लेते हैं और उसके स्थान पर उन्हें झूठा विज्ञान दे देते हैं। यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़ी होकर देखो और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि उत्तम मार्ग कौन सा है और उसी पर चलो। यिर्मयाह 6:16। कोई भी हमारे विश्वास की नींवों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न न करे, उन नींवों को जो हमारे कार्य के आरंभ में वचन के प्रार्थनापूर्ण अध्ययन और प्रकाशना के द्वारा डाली गई थी। इन्हीं नींवों पर हम पिछले 50 वर्षों से निर्माण करते आए हैं। मनुष्य ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई नया मार्ग खोज लिया है और वे उस डाली जा चुकी नींवों से भी अधिक दृढ़ नींव रख सकते हैं, परंतु ये एक बड़ा छल है। जो नींव डाली जा चुकी है उसके सिवा कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं रख सकता। अतीत में बहुतों ने एक नए विश्वास का निर्माण करने, नए सिद्धांतों की स्थापना करने का उपक्रम किया है, पर उनकी इमारत कितने समय तक खड़ी रह सकी? वो शीघ्र मोड़ पड़ी, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर नहीं डाली गई थी। क्या प्रथम शिष्यों को मनुष्यों की बातों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या उन्हें मिथ्या सिद्धांतों को सुनना नहीं पड़ा और फिर सब कुछ कर चुकने के बाद दृढ़ खड़े होकर ये कहना नहीं पड़ा, उस नींव को छोड़ जो डाली जा चुकी है कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं डाल सकता? 1 कुरिन्थियन्स 3:11। अतः हमें अपने भरोसे के आरंभ को अंत तक दृढ़तापूर्वक थामे रहना है। सामर्थ्य के वचन से परमेश्वर और मसीह की ओर से इस लोगों के पास भेजे गए हैं जो उन्हें बिंदु बिंदु करके संसार से निकालकर वर्तमान सत्य के दृष्पष्ट प्रकाश में ले आते हैं। पवित्र अग्नि से स्पर्श किए हुए होंठों के साथ परमेश्वर के सेवकों ने इस संदेश की घोषणा की है। दिव्य वाणी ने इस घोषित सत्य की प्रामाणिकता पर अपनी मुहर लगा दी है। टेस्टिमोनीज Volume 8 296-297।
अंतिम दिनों में खड़े रहने के लिए एक प्रजा को तैयार करने का कार्य, यहेजकेल के अध्याय 37 की 2 भविष्यवाणियों से संबंधित कार्य है। एक संदेश यशायाह की मरुस्थल में पुकारती आवाज के द्वारा दिया जाता है, और यहेजकेल का पहला संदेश उन लोगों को इकट्ठा करता है जो 3.5 दिन तक सदोम और मिस्र के नगर की सड़क पर मरे पड़े थे। तब वे पहचानते हैं कि वे मत्ती के 10 कुमारियों के दृष्टांत के विलंब के समय में रहे हैं। फिर वे वो आह्वान सुनते हैं जो यिर्मयाह को दिया गया था, कि यदि वे लौटना चाहते हैं तो बहुमूल्य को निकृष्ट से अलग करें। वे ये भी पहचानते हैं कि दानियल के अध्याय 9 की प्रार्थना वर्तमान सत्य है। अतः जब वे सुषमाचार की शर्तों को स्वीकार कर उन्हें पूरा करते हुए लौटने का चुनाव करते हैं, तब वे यहेजकेल का दूसरा संदेश प्राप्त करते हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर एक शक्तिशाली सेना बन जाते हैं।
अंतिम दिनों में लोगों को खड़ा होने के लिए तैयार करने का कार्य रेखा पर रेखा वाली अंतिम वर्षा की पद्धति से पूरा किया जाता है। उसमें 1843 और 1850 के अग्रणी चार्टों पर प्रदर्शित मिलरावादी सत्यों की पुनर्स्थापना शामिल है। वे दोनों चार्ट हबक्कूक की 2 तालिकाएं हैं और उन्हें रेखा पर रेखा एक दूसरे पर रखा जाना है, और ऐसा करने पर वे दोनों चार्ट उन आधारभूत सत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें धूल झाड़ने वाले व्यक्ति द्वारा अंतिम दिनों में पुनर्स्थापित किया जाना है। जब उन्हें एक साथ पंक्ति दर पंक्ति रखा जाता है तो वे 5 Avkurmala 1833 के चार्ट में हुई गलती की पहचान करते हैं, जिसे बाद में 1850 के चार्ट में सुधारा गया। एक तालिका के रूप में पंक्ति दर पंक्ति विचार करने पर वे परमेश्वर की प्रजा के अनुभव और 7 गर्जनाओं के छिपे इतिहास दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि मिलकर वे पहली निराशा, प्रतीक्षा का समय, आधी रात की पुकार 22 अक्टूबर 1844 और महान निराशा को दर्शाते हैं। 7 गर्जनाओं का गुप्त इतिहास वही है जिसे पहली निराशा, आधी रात की पुकार और महान निराशा कहा जाता है। ये सत्य की संरचना है, क्योंकि सत्य का आधार इस पर है कि हिब्रू शब्द ट्रूथ का पहला और अंतिम अक्षर उसी प्रकार समान है जैसे उस इतिहास की पहली और अंतिम निराशा। मध्य और 13वां अक्षर विद्रोह का प्रतीक है, जैसा कि उन लोगों द्वारा दर्शाया गया है जो आधी रात की पुकार के संदेश को अस्वीकार करते हैं। जब उन दोनों चार्टों को साथ रखा जाता है तो वे मिलराइटों के भविष्य सूचक सत्यों के लिए 2 साक्षी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें धूल झाड़ने वाले व्यक्ति द्वारा पुनर्स्थापित किया जाना है, और वे उस अनुभव की पहचान ही करते हैं जो 1,44,000 के अनुभव का प्रतिरूप है। जिन्हें निशान 1,44,000 बनने के लिए बुलाया गया था, उन्हें 18 जुलाई 2020 को अपनी पहली निराशा का सामना करना पड़ा।
और फिर जुलाई 2023 में उन्हें जंगल में पुकारने वाली एक आवाज का संदेश मिला। वो आवाज उन्हें लौट आने के लिए बुला रही थी। सात गर्जनाओं के गुप्त इतिहास के इसी बिंदु पर विद्रोह प्रकट होगा, क्योंकि अगला मार्ग चिन्ह वो समय है जब धूल झाड़ने वाला व्यक्ति रत्नों को समेटकर उन्हें पेटिका में डाल देता, तब वे 10 गुना अधिक चमकते हैं। उसी समय मिलर जाग उठा। जब कुमारियां मिलर जागती हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। कई पीढ़ियों से चली आ रही उजाड़ की पुनर्स्थापना एक ऐसा कार्य है जिसमें 2 गवाहों को भाग लेना आवश्यक है। वो कार्य अब किया जा रहा है। दानियल की पुस्तक के अध्याय 7, 8 और 9 में उलाई नदी के दर्शन द्वारा प्रस्तुत भविष्यवाणियों को विलियम मिलर ने इस ढांचे में रखा कि वे मूर्ति पूजकता और पोप तंत्र, इन 2 उजाड़ने वाली शक्तियों से संबद्ध है। फ्यूचर फॉर अमेरिका का ढांचा है मूर्ति पूजकता, अजगर, उसके बाद पोप तंत्र, पशु और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद, झूठ का नबी। दोनों ढांचों को स्थापित करने की कुंजी प्रेरित पॉलस की रचनाएं हैं। प्रेरित पॉलस वो भविष्यवाणी का स्वर थे जिसने प्राचीन इसराइल को आत्मिक इसराइल से जोड़ा। अपने परिवर्तन से पहले पॉलस का नाम शाउल था, जिसका अर्थ चयनित या स्थापित है। पॉलस को अन्य जातियों का प्रेरित बनने के लिए चुना, चयनित गया, और उन्हें अन्य बातों के साथ साथ पुराने नियम की उनकी समझ के कारण चुना गया था। नए नियम का अधिकांश भाग लिखने वाले पॉलस की तरह पुराने नियम की समझ नए नियम के किसी अन्य लेखक के पास नहीं थी। उन्हें अन्य जातियों के समक्ष सुसमाचार प्रस्तुत करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। साथ ही उन्हें पुराने नियम के भविष्य सूचक इतिहासों का क्रूस के काल के पश्चात आने वाले भविष्य सूचक इतिहास के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी चुना गया था। पॉलस की गवाही के बिना मिलरवादियों की भविष्य सूचक समझ और फ्यूचर फॉर अमेरिका की भविष्य सूचक समझ का अस्तित्व ही न होता। उसी इतिहास में जहां शाब्दिक इसराइल को परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में अस्वीकार कर दिया गया, पॉलस को ये पहचान कराने के लिए चुना गया कि प्राचीन इसराइल, यद्यपि तब परमेश्वर से अलग कर दिया गया था, आत्मिक इसराइल के भविष्य सूचक इतिहास का प्रतीक था। पहले और तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलनों के लिए आवश्यक भविष्य सूचक नियम मुख्यतः प्रेरित पॉलस की रचनाओं पर आधारित है। इसी कारण हम पॉलस द्वारा पहचाने गए कुछ भविष्यद्वाणी संबंधी सिद्धांतों पर विचार करेंगे, जिन्होंने मिलर के अनुयायियों के संदेश को प्रभावित किया, जो 2 उजाड़ने वाली शक्तियों के ढांचे में रखा गया था। और ऐसा करते हुए हम ये भी देखेंगे कि वे सिद्धांत 3 उजाड़ने वाली शक्तियों के ढांचे पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं।
और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञान में रहो कि हमारे सब पितृजन बादल के नीचे थे और सब समुद्र के बीच से होकर निकले, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा में बपतिस्मा लिया, और सब ने वही आत्मिक भोजन खाया, और सब ने वही आत्मिक पेय पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न न था, क्योंकि वे मरुभूमि में नष्ट कर दिए गए। अब ये बातें हमारे लिए उदाहरण थीं, ताकि हम बुरी वस्तुओं की लालसा न करें, जैसा कि उन्होंने भी की, और तुम भी जैसे उनमें से कुछ थे मूर्ति पूजक न बनो। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने को बैठ गए और क्रीड़ा करने को उठ खड़े हुए, और न हम व्यभिचार करें जैसा कि उनमें से कुछ ने किया, और एक ही दिन में 23,000 गिर पड़े, और ना हम मसीह की परीक्षा लें जैसा कि उनमें से कुछ ने ली और सांपों से नाश किए गए, और ना तुम बड़बड़ा हो जैसे उनमें से कुछ बड़बड़ाए और विनाशक के द्वारा नष्ट किए गए। अब ये सब बातें उन पर उदाहरणार्थ घटी, और वे हमारे चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, जिन पर युगों का अंत आ पहुंचा है। 1 कुरिन्थियों 10:7-10।
10 छोटी आयतों में पौलुस ये स्पष्ट करते हैं कि बपतिस्मा की विधि का प्रतिरूप लाल समुद्र पार करने में दिखाया गया था कि वो चट्टान जो प्राचीन इसराइल के पीछे चलती थी एक आध्यात्मिक चट्टान थी, और वो मसीह था। वो ये भी बताता है कि प्राचीन इसराइल अंत के दिनों में रहने वालों के लिए उदाहरण था। ये खंड एक चेतावनी है, और यही खंड सत्य का समर्थन करने वालों और सत्य का विरोध करने वालों के बीच विवाद का विषय है। एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्री सिखाते हैं कि पौलुस मात्र ये बता रहे थे कि प्राचीन इसराइल का इतिहास ऐसे नैतिक पाठ प्रस्तुत करता है जिन्हें अंत के दिनों में रहने वालों को समझना आवश्यक है, पर वे इस पर जोर देते हैं कि पौलुस ये नहीं कह रहे थे कि शाब्दिक इसराइल के इतिहास वास्तव में आध्यात्मिक इसराइल द्वारा दोहराए जाने वाले थे। सिस्टर व्हाइट अक्सर इस खंड का उपयोग ठीक ठीक ये पुष्टि करने के लिए करती हैं कि पौलुस का आशय क्या था।
प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं में से प्रत्येक ने अपने ही समय के लिए नहीं वरन हमारे लिए अधिक कहा, ताकि उनकी भविष्यद्वाणी हमारे लिए प्रभावी हो। ये सब बातें उन पर दृष्टांत के लिए घटी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, जिन पर जगत के अंत आ पहुंचे हैं। 1 कुरिन्थियों 10:11। वे अपनी नहीं परंतु हमारी सेवा के लिए उन बातों का प्रकाश करते थे जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा दिया गया है, जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार प्रकाश सुनाया, और इन बातों को देखने की लालसा स्वर्गदूत भी रखते हैं। 1 पत्रस 1:12। बाइबल ने इस अंतिम पीढ़ी के लिए अपने खजानों को संचित किया है और उन्हें एक साथ बांध रखा है। पुराने नियम के इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर कार्यवाहियां इन अंतिम दिनों में कलीसिया में पुनः घटित हुई हैं और हो रही हैं। सिलेक्टेड मैसेजेस Book 3, 338-339।
पुराने नियम के इतिहास की महान और गंभीर घटनाएं इन अंतिम दिनों में कलीसिया में दोहराई गई हैं और दोहराई जा रही हैं। इन पदों में पौलुस के आशय का सार सिस्टर व्हाइट इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं। प्राचीन इसराइल को शाब्दिक इसराइल के इतिहास का प्रतीकात्मक चित्रण ठहराने वाली पौलुस की व्याख्या को कमजोर करने के प्रयास में शैतान ने इस भविष्यवाणी के सिद्धांत के विरुद्ध दो प्रमुख आक्रमण थोपे हैं। पहला, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, ये दावा है कि पौलुस केवल ये बता रहे थे कि वे इतिहास नैतिक शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। वो झूठी शिक्षा आधा सत्य है और आधा सत्य बिल्कुल भी सत्य नहीं होता। ये सच है कि प्राचीन इसराइल के इतिहास से निकाली जा सकने वाली नैतिक शिक्षाएं अंतिम दिनों में रहने वालों के हित के लिए हैं, परंतु जब उसी बात का प्रयोग ये नकारने के लिए किया जाता है कि वे इतिहास उन घटनाओं का भी एक चित्रण है जो फिर से दोहराई जाएंगी, तब वो आधा सत्य बन जाती है जिसे सत्य का ही इनकार कराने के लिए रचा गया है।
परमेश्वर की प्रजा के सामने अब आशीर्वाद या श्राप है यदि वे संसार से निकलकर अलग हो जाएं और विनम्र आज्ञाकारिता के मार्ग में चलें तो आशीर्वाद, और यदि वे उन मूर्ति पूजकों के साथ मिल जाएं जो स्वर्ग के उच्च दावों को रौंदते हैं तो श्राप। विद्रोही इसराइल के पाप और अधर्म दर्ज किए गए हैं, और यह चित्र हमारे सामने चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है कि यदि हम उनके अपराध के उदाहरण का अनुकरण करें और परमेश्वर से दूर हो जाएं तो हम भी उतने ही निश्चित रूप से गिरेंगे जितने वे गिरे। अब ये सब बातें उन पर उदाहरण के लिए घटी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं, जिन पर संसार का अंत आ पहुंचा है। टेस्टिमनीज खंड 1 सौत्सैघ्यो।
एक सत्य का उपयोग दूसरे सत्य को नकारने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा किया जाता है तो ये परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल देता है।
उद्धारकर्ता के एक वचन का उपयोग दूसरे वचन को नष्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। महान विवाद 3:7-8।
ये शिक्षा कि प्राचीन इसराइल का इतिहास केवल नैतिक पाठों का प्रतिनिधित्व करता है, अक्सर एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्रियों द्वारा परमेश्वर के भविष्यवाणी संबंधी वचन को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होती है, और ये उन अर्ध सत्यों में से एक है जो परमेश्वर की प्रजा को छलकर झूठ स्वीकार कराने हेतु तैयार की गई दंत कथाओं की थाली में शामिल है, और जो झूठ वे स्वीकार करते हैं उसकी पहचान प्रेरित पौलुस के लेखनों में की गई है। प्राचीन इसराइल का इतिहास आधुनिक इसराइल के इतिहास को दर्शाता है। इस सिद्धांत पर दूसरा प्रमुख आक्रमण काउंटर रिफॉर्मेशन के दौर में जेसुइटों ने गढ़ा था, और उसका आशय यही है कि प्राचीन इसराइल का इतिहास दोहराया जाता है। जेसुइटों का झूठ यह है कि इतिहास आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि शाब्दिक रूप से दोहराया जाता है। ये झूठ इस समझ को रोकने के लिए गढ़ा गया था कि रोम का पोप बाइबल की भविष्यवाणी का मसीह विरोधी है। क्योंकि ये शिक्षा इस सत्य को स्वीकार करती है कि अंतिम दिनों में एक मसीह विरोधी होगा, पर यह तर्क देती है कि मसीह विरोधी का प्रतिनिधित्व एक लौकिक शक्ति करती है, न कि आध्यात्मिक शक्ति। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 की वो वेश्या जिसके माथे पर रहस्य बाबुल लिखा है, तब एक ऐसी वेश्या ठहरेगी जो बाबुल की वास्तविक भूमि में उठेगी, जो आज का इराक है।
जो लोग शब्द की समझ में भ्रमित हो जाते हैं, जो मसीह विरोधी का अर्थ समझ नहीं पाते, वे निश्चित रूप से स्वयं को मसीह विरोधी के पक्ष में खड़ा कर देंगे। क्रेस कलेक्शन 105।
पोप एक वास्तविक व्यक्ति है जो एक वास्तविक शक्ति कैथोलिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उसे और उसके संगठन को भविष्यवाणी में शाब्दिक बाबुल के माध्यम से पहचाना गया है, और उसे सही रूप से केवल तब पहचाना जा सकता है जब विरोधी मसीह के विषय को किसी शाब्दिक उदाहरण की आध्यात्मिक परिपूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए। पौलुस ने बताया कि शाब्दिक इसराइल आध्यात्मिक इसराइल को दर्शाता है, पर यह कोई नया भविष्यवाणी सत्य नहीं था जो उसने प्रस्तुत किया, क्योंकि उसकी समझ सामान्यतः पुराने नियम पर आधारित थी और उसी पर उसकी गवाही आधारित है।
यहोवा इसराइल का इतने साल हो ये। इसराइल के पास आने वाला बतीशा इतने सालों का यहोवा यूं कहता है, मैं पहला हूं और मैं अंतिम हूं, और मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे समान कौन है वो बुलाए, उसे प्रकट करे और मेरे लिए उसे क्रमबद्ध करे। जब से मैंने प्राचीन लोगों को ठहराया है और जो बातें आने वाली हैं, जो आगे होंगी, वे उन्हें दिखाएं। डरो मत, भयभीत न हो। क्या मैंने उस समय से तुझे नहीं बताया और प्रकट नहीं किया? तुम तो मेरे साक्षी हो। क्या मेरे सिवाय कोई परमेश्वर है? नहीं, कोई नहीं। मैं किसी को नहीं जानता। यशाया 44:8।
हमें जैसे पौलुस था मसीह के गवाह होना है कि अल्फा और ओमेगा ने केवल प्राचीन इसराइल ही नहीं बल्कि बाइबल के सभी प्राचीन लोगों को भी प्रतीकों के रूप में ठहराया, ताकि वे जो बातें आने वाली हैं, अर्थात अंतिम दिनों में रहने वालों पर घटने वाली बातें को दिखाएं। पौलुस पुराना नियम का विशेषज्ञ था और उसे शाब्दिक इसराइल और आत्मिक इसराइल के युगों के बीच भविष्यद्वाणीगत सेतु के रूप में उठाया गया था। उसकी रचनाओं ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया जिन्होंने अंत के समय में ज्ञान की वृद्धि को समझा 1799 में और साथ ही 1993 में। प्राचीन शाब्दिक बाबुल, प्राचीन पूर्व देश के लोग, प्राचीन मिस्र, प्राचीन यूनान और प्राचीन मादी फारसी साम्राज्य संसार के अंत में आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक है। प्राचीन प्रतीक वे पूर्ववर्ती शाब्दिक रूप हैं जो बाद में आने वाली आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पौलुस तो यहां तक कहते हैं कि शाब्दिक आदम आध्यात्मिक आदम जो मसीहु है का प्रतीक था।
और ऐसा लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। परंतु पहले वो नहीं जो आत्मिक है, परंतु वो जो प्राकृतिक है, और उसके बाद आत्मिक। पहला मनुष्य पृथ्वी से पार्थिव, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आया प्रभु है। जैसा पार्थिव है वैसे ही वे भी हैं जो पार्थिव है, और जैसा स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने पार्थिव का स्वरूप धारण किया है वैसे ही हम स्वर्गीय का स्वरूप भी धारण करेंगे। कुरिन्थियों 15 ही तर्शिकता 15 पर 39।
प्रथम और अंतिम आदम के विषय में पौलुस कुछ अत्यंत गहन शिक्षाएं देता है, लेकिन हम केवल उस सिद्धांत की पहचान कर रहे हैं जिसे वो इस खंड में बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है जब वो कहता है, पहले वो नहीं जो आध्यात्मिक है पर वो जो प्राकृतिक है, और उसके बाद वो जो आध्यात्मिक है। शाब्दिक, जिसे पौलुस यहाँ प्राकृतिक कहता है, पहले है, और आध्यात्मिक अंतिम। शाब्दिक इसराइल पहले था और प्राकृतिक और आध्यात्मिक इसराइल उसके बाद आता है। शाब्दिक बाबुल आध्यात्मिक बाबुल से पहले आता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर पौलुस के लेखन में जोर दिया गया है वो इतिहास का वो समय है जब शाब्दिक से आध्यात्मिक में परिवर्तन लागू किया जाना है। ये क्रूस का कालखंड है जब शाब्दिक से आध्यात्मिक में भविष्यवाणीगत परिवर्तन पहचाना जाता है।
क्योंकि तुम सब मसीही यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम में से जितने मसीह में बपतिस्मा पाए हैं उन्होंने मसीहे को धारण कर लिया है। ना वहाँ यहूदी है, ना यूनानी, ना दास है, ना स्वतंत्र, ना पुरुष है, ना स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीहे के हो तो अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। गलातियों 3:26-3।
तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार चाहे जो भी हो, यदि और जब तुम मसीह को स्वीकार करते हो तो तुम अब्राहम की संतान बन जाते हो। तुम शारीरिक इसराइल नहीं हो, तुम आत्मिक इसराइल हो। शारीरिक से आत्मिक की ओर संक्रमण का माध्यम क्रूस था। पौलुस मानव जाति को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। हर वर्ग की अपनी वाचा है और दोनों ही अब्राहम की संतान हैं। दोनों के पास एक एक नगर है जो उनके परिवार और वाचा का प्रतिनिधित्व करता है। हर कोई या तो शारीरिक आदम का पुत्र है या आत्मिक आदम का,
क्योंकि लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र थे, एक दासी से और दूसरा स्वतंत्र स्त्री से। परंतु दासी का वो पुत्र देह के अनुसार जन्मा था, परंतु स्वतंत्र स्त्री का पुत्र प्रतिज्ञा के अनुसार था। इन बातों का रूपक अर्थ है क्योंकि ये दो वाचाएं हैं। एक सीनै पर्वत से है जो दासत्व के लिए जन्म देती है, जो हाजिरा है, क्योंकि ये हाजिरा अरब में सीनै पर्वत है और जो यरूशलेम अब है उसके अनुरूप है, और वो अपने बच्चों सहित दासत्व में है। परंतु जो ऊपर का यरूशलेम है वो स्वतंत्र है, और वही हम सब की माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ जो जनती नहीं आनंद कर, हे जो प्रसव पीड़ा नहीं उठाती फूट कर पुकार, क्योंकि निर्जन की संतान उससे बहुत अधिक है जिसका पति है। अब भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, परंतु जैसे उस समय देह के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी है। तो भी शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ वारिस न होगा। अतः भाइयों, हम दासी की संतान नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। गलातियों 4:22-30।
क्रूस के कालखंड में प्राचीन शाब्दिक वास्तविकताएं आधुनिक आध्यात्मिक सत्य की प्रतीक बन गईं। प्रेरित पौलुस ने इन मूलभूत भविष्य सूचक सत्यों को स्पष्ट किया, जिनके फलस्वरूप विलियम मिलर दो उजाड़ने वाली शक्तियों का ढांचा स्थापित कर सके, और इसी पर उन्होंने अपने सभी भविष्य सूचक निष्कर्ष आधारित किए। प्रेरित पौलुस द्वारा संपन्न वही कार्य तीन उजाड़ने वाली शक्तियों की पहचान करता है जो फ्यूचर फॉर अमेरिका के सभी भविष्य सूचक निष्कर्षों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। मिलर की उस समझ का ढांचा जिसके अनुसार ज्ञान की वृद्धि का प्रतिनिधित्व अध्याय 7, 8 और 9 में उलाई नदी के दर्शन द्वारा किया गया है, उसकी इस खोज पर आधारित था कि दानियेल की पुस्तक में नित्य मूर्ति पूजक रोम का प्रतिनिधित्व करता है। इन्होंने ये खोज पौलुस के थिस्लुनीकियों के नाम दूसरे पत्र में की। ये समझ उस भविष्य सूचक झूठ के संदर्भ में पहचाना गया प्राथमिक सत्य है। वही झूठ अंतिम दिनों में सातवें दिन एडवेंटिस्टों पर प्रबल भ्रम लाता है। अगले लेख में हम पौलुस के पत्र में मिलर ने जो पहचाना उस पर विचार करते हुए उलाई नदी के दर्शन में प्रदर्शित ज्ञान की वृद्धि के अपने अध्ययन को जारी रखेंगे।
वह जो बाह्य रूप के नीचे देखता है, जो सब मनुष्यों के हृदयों को पढ़ता है, उन लोगों के विषय में जिन्हें बड़ा प्रकाश प्राप्त हुआ है, ये कहता है, वे अपनी नैतिक और आत्मिक दशा के कारण न तो दुखी हैं और न ही विस्मित। हाँ, उन्होंने अपनी ही चालें चुन ली हैं और उनकी आत्मा अपनी घृणित बातों में प्रसन्न होती है। मैं भी उनके भ्रम को चुनूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हें उन पर ले आऊँगा, क्योंकि जब मैंने बुलाया तब किसी ने उत्तर न दिया, जब मैंने कहा तब उन्होंने न सुना, वरन उन्होंने मेरी आँखों के सामने बुराई की और उसी को चुना जिसमें मुझे प्रसन्नता न थी। परमेश्वर उन्हें प्रबल भ्रांति भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, क्योंकि उन्होंने उद्धार पाने के लिए सत्य से प्रेम न रखा परंतु अधर्म से प्रसन्न हुए। यशाया 7:3-4, 2 थिस्सलुनीकियों 2:11, 10-12। स्वर्गीय शिक्षक ने पूछा, मन को भ्रमित करने वाला इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है कि आप ये दिखावा करें कि आप सही नींव पर निर्माण कर रहे हैं और कि परमेश्वर आपके कार्यों को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में आप बहुत सी बातें सांसारिक नीतियों के अनुसार कर रहे हैं और यहोवा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। ओह, ये एक बड़ा छल है, एक मोहक भ्रम जो मन पर अधिकार कर लेता है। जब वे लोग जिन्होंने कभी सत्य को जाना है भक्ति के बाहरी रूप को उसकी आत्मा और सामर्थ्य समझ बैठते हैं, जब वे ये मान लेते हैं कि वे धनी हैं और संपत्ति में बढ़ गए हैं, इससे परमेश्वर सही नींव पर निर्माण कर रहे हैं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जबकि वास्तव में उन्हें हर चीज की आवश्यकता है। टेस्टिमोनीज खंड 8 242-250।